हमारे मालिक हम स्वयं है, जिसको धनी कहते हैं। हमारा मालिक कौन हो सकता है? जो चेतना है इस शरीर के अंदर, वही उसका अहंकार के रूप में नहीं। भगवान स्वयं दशम दसवें अध्याय के अंदर जो विभूति योग है, मैं ये हूं मैं ये हूं, यहां तक कह दिया कि इस जड़ चेतन सृष्टि में यदि यदि विभूति मत्सत्व श्रीमद उर्जितमेव, जो कुछ जड़ चेतन सृष्टि में है वो सबके अंदर एकांश है स्थित हो जगत। गीता अध्याय 10 श्लोक 45, क्यों एक एक अंश रूपे दरेक मा रहेलो छु। હવે દરેકમાં રહેલો છે એટલે ચર અચરની અંદર કોઈ પણ એવી જગ્યા બાકી નથી કે જ્યાં ઈશ્વરની અનુભૂતિ સન્નિધિ ન હોય, પણ એનું અનુસંધાન કરતા આપણને આવડવું જોઈએ, દરેકમાં છે। જેમ પથ્થરની અંદર અનુસંધાન કરતા આવડ્યું, બાકી એ પથ્થર જ હતો, કલાકારે એની અંદરથી મૂર્તિ કાઢી, મૂર્તિની સ્થાપના કરી અને એની અંદર ભક્તિભાવથી આપણું અનુસંધાન થયું, એમાંથી ઈશ્વરના દર્શન થયા। પૂજા કે સમય સુપારી કે અંદર ભગવાન કા આધાન કરતે હૈ, ગુડ કે અંદર કર દેતે કે ભગવાન અબ હમ પૂજા કર રહે, તો અપની વૃત્તિ સબસે પહેલે બનની ચાહીએ। ઈશ્વર ચર અચર સભી મેં હૈ, જૈસે सर्वम खलम इदम ब्रह्म, ये सर्व जगत ब्रह्ममय है और कुछ नहीं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म की ही उपस्थिति है और कुछ है ही नहीं। जो सच ही ब्रह्म ही सर्वत्र है तो खाली जगह कौन सी पड़ी, लेकिन हमारा अनुसंधान नहीं पा सकते हैं। हम मिट्टी से मूर्ति बना लेंगे, उसकी पूजा कर लेंगे, जैसे श्रावण महीना आता है और श्रावण महीने में शिव जी के छोटे छोटे मिट्टी के बाण बनाते हजारों लाखों की और पूजा करते, बस यही है। जड़ चेतन सब के अंदर सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुगपानी, उमा जय राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मय देख ही जगत कहिसन करो विरोध। कहां प्रभु नहीं है, देवताओं की सभा मिली है तब भी कहा है भगवान शिव ने, कहो उसे कहां जहां प्रभु नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई नहीं जाना। हरि व्यापक है, सर्वत्र समा हुआ है, सर्वत्र बैठा हुआ है, बस ऐसे ही प्रगट स्वरूप हमारे चित्त में, हमारी वृत्ति में भगवान स्वयं प्रकट दिखाई देना चाहिए। स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने एक बार सत्संग में, सुबह का सत्संग था 5 बजे 4 बजे का, कि भगवत साक्षात्कार हो सकता है यदि कोई चाहे तो एक युवान खड़ा हुआ कि स्वामी जी मैं कर सकता हूं। स्वामी जी के तू सही रूप में कह रहा है, तुझे साक्षात्कार करना है, हाँ मैं जो कहूं वो सब करना पड़ेगा, तू कर सकता है? एक बार हाँ तो भर दी, हाँ, कि यहां से बाहर निकल करके रास्ते में जो कोई मिले उसको प्रणाम करते चल। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कितने महाराज स्वामी जी के मार्ग में कुत्ता मिल तो उसको भी प्रणाम करना पड़ेगा, अरे गधा मिलेगा तो उसको भी प्रणाम करना पड़ेगा। हरि व्यापक सर्वत्र, कि तू नहीं कर सकता बैठ जा, ये तेरा काम नहीं। स्वामी जी ने उसको, क्योंकि ये इतनी सरल बात नहीं है कि दृष्टि को एक बनाना, दृष्टि में अपने कोई भेद न हो, दृष्टि भेद, इसलिए तो कहा समदृष्टि। दृष्टि में तनिक भी भेद नहीं आना चाहिए कि निम्न है ये हल्का है ये छोटा है ये बड़ा है ये महान है। आत्मवत सर्वभूतेषु भगवान कहते न मैं द्वेषी अस्ति न प्रिय है, मेरे आत्मावत मुझे सभी प्रिय है, कोई किसी का मैं द्वेष भी नहीं करता हूँ, किसी का राग भी नहीं करता हूँ, सब समोहम सबके अंदर मैं समान हूं। तो ये जो समदृष्टि है, वो समदृष्टि के द्वारा हमारे व्यवहार में, हमारे विचार में, हमारे चिंतन में कोई भी भेद नहीं होना चाहिए, सभी में एक तू ही है। समलोष्टास्मकांचन है, सुवर्ण है मिट्टी है ढेला, तो दोनों के अंदर समान दृष्टि, उसमें कोई भेद नहीं। तो ये समदृष्टि है। अध्यास तब बनेगा, आसक्ति तभी आएगी जब हमारी दृष्टि में से समता हट जाएगी, भेद तभी आ जाएगा। दृष्टि के अंदर कुछ न कुछ विकृति आएगी, दृष्टि भेद हो जाएगा, और बाद में आप अपने व्यवहार को सही नहीं बना सकते। जहां स्वार्थ होगा वहां दृष्टि ऊपर चली जाएगी, और जहां स्वार्थ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अपने आप अपने आंख को ऐसे मोड़ लोगे, क्या करना है, क्या जरूरत है, क्या लेना देना है। मगर समदृष्टि में हमारी वृत्ति किसी भी प्रकार कहीं पर भी फंसनी नहीं चाहिए, कभी नहीं फंसे, देखते चलो, मात्र साक्षीभूत बन करके कहीं लगाव आ गया और तो बह जाओगे। नदी के अंदर कचरा कुछ भी जा रहा है, हम किनारे पर बैठ खड़े खड़े देख रहे हैं, तो बहुत कुछ अंदर जल जल भी जा रहा है, बह रहा है, लेकिन हम मात्र दृष्टा बन करके देख रहे हैं, पानी जा रहा है जा रहा है, लेकिन अंदर कोई ऐसी चीज कीमती चीज बहती हुई जा रही है, उठ दौड़ के कूद पड़े तो वो चीज के साथ, वो जल के साथ तुम भी बहते जाओगे। जो स्थिर थे, जो साक्षीभूत थे, किनारे पर खड़े हुए देख रहे थे, उसके अलावा आप उस प्रवाह के अंदर कूद पड़े, तो जैसे प्रवाह चलता है ऐसे हमको भी उसके साथ खींचना खींचना, वो खींचता रहेगा खींचता। जब भी हम हमारी साक्षी भाव की अवस्था को हटा करके किसी भी प्रकार के व्यवहार के अंदर और किसी भी परिस्थिति में जाकर के हम किसी भी परिस्थिति अवस्था में जाकर के हम कूद पड़ते हैं ना, तो उसके साथ बहना पड़ता है। चाहे हमारे स्थिरता की अवस्था में बैठे हुए हैं, घर में विचार चल रहे हैं, ध्यान के अंदर चलने दो चलने दो, एक विचार आता है जाता है, आ रहा है जा, कई विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, स्वस्थ होकर के देखते रहो, अपने ही विचार को देखते रहो, इसमें अच्छा बुरा कुछ भी भाव मत आने दो, तभी आप एक अग्रता से अंतर्मुखता से स्वस्थ बैठ सकते हो। मगर उस विचारों में कोई भी विचार के प्रति अच्छा या बुरा भाव आया, और उसी साथ उसी के साथ ही अपनी जो अंतर्मुख अवस्था है टूटेगी, और अच्छे बुरे उस विचार के साथ हम आप स्वयं बहते जाओगे। सदगुरु मोए आन मिले नहीं तो बहे जात बेपूर। मैं कहीं पर बह गया होता मगर गुरु महाराज ने मेरा उद्धार कर लिया। तो जो बहाव है उसके प्रति हम मात्र तटस्थ एक दृष्टा होकर साक्षी बनकर के खड़े रहे, तब तक तो हमारी अवस्था सही है। मगर जहां कूद पड़े अच्छी तरह से बैठे थे, अंदर जाकर के भीगोगे, कपड़े भी भींगेगे, तैरना नहीं आता है तो बहते जाओगे, डूब जाओगे, खत्म हो जाओगे। साक्षी बनकर के, दृष्टा बन करके खड़े हैं, हमारे मन में विचार की धारा नदी के प्रवाह की तरह बहती रहती है, कभी स्थिर नहीं, कभी शांत नहीं होती, नींद में भी स्वप्न के अंदर भागता दौड़ता है मन, जागते समय तो दौड़ता ही भागते रहता है। कभी सोचा अपना मन अपने पास एक मिनट एक क्षण भी बैठा हुआ कभी आपने देखा, જોયું કોઈ દિવસ? આપણું પોતાનું મન આપણી સાથે બેઠું હોય, જેમ ઘરમાં નાનું બાળક અતિ ચંચળ હોય, તમે પકડી લઈને બેસાડી રાખો ને પાછું ભાગે, પકડી રાખો ને પાછું ઘર બહાર ભાગી જાય, એમ મન પણ અતિ ચંચળ, જે પોતાનું હોવા છતાંય મન પોતાનું પોતાની પાસે નથી બેસતું, દોડ્યા જ કરે, ભાગ્યા જ કરે। એ મન ભાગે છે કેમ? કોઈ પણ વૃત્તિને લઈને, કોઈ પ્રવૃત્તિને લઈને બહાર ભાગે છે, એને પકડીને ભાગે છે। પણ જો એ પ્રવૃત્તિને છોડી દઈ અને શાંત ઉભું રહે તો ક્યાંય જવા તૈયાર ન થાય। આશા નામસ શૃંખલા ગયા બધા પ્રધાવંતી મુક્તા તિષ્ઠંતી પંગુવત। આશા નામની બેડી છે, બંધન છે, પણ એ બંધન જેના પગમાં પડેલું હોય એ પાંગળાની માફક ઊભો નહીં રહે કે મારે બંધન થયું છે પગમાં, પણ આશાની બેડી જેના પગમાં પડીને દોડતો રહે, ઊભું ના રહી શકે, અને જેના પગમાંથી બેડી છૂટી ગઈ એ ઊભો રહ્યો સ્થિર થઈ જશે, નહીં દોડે, કેમ કે એને કોઈ એવી આશા નથી। તો એ જે અવસ્થા માણસની સાધક તરીકેની મનની વૃત્તિઓને સ્થિર કરવા માટે